नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। पश्चिम एशिया में दो सप्ताह के युद्ध विराम के बावजूद इसराइल के लगातार हमलों में लेबनान में मृतकों की संख्या पर भारत ने गहरी चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को देखते हुए मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है।
भारत ने हमेशा नागरिकों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना और देश की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। लेबनान में हमारा दूतावास भारतीयों की सुरक्षा के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
सरकार ने देश की बिजली और ऊर्जा जरूरतों की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। नई दिल्ली में एक अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव पीयूष सिंह ने ये जानकारी दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में घरेलू एलपीजी और ईंधन की आपूर्ति स्थिर है।
14 मार्च से लगभग 1,06,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। प्रति रोज लगभग 6,650 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हो रही है। हर रोज लगभग 1,00,000 के आसपास 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हो रही है। कल लगभग 1,10,000 सिलेंडर्स की सेल हुई।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह ने आज लेबनान सीमा पर एक दूसरे पर हमले किए। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में इसराइल के हमलों के जवाब में इसराइली क्षेत्रों पर हमले किए। ईरान ने कहा कि युद्ध विराम लेबनान पर लागू होना था। वहीं इसराइल और अमेरिका का कहना है कि लेबनान युद्ध विराम समझौते में शामिल नहीं है। होर्मुज जल डमरू मध्य आज भी लगभग बंद है। इससे वैश्विक जहाजरानी और तेल आपूर्ति बाधित हो रही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान में शांति वार्ता से पूर्व ईरान को अमरीका के साथ चालबाजी नहीं करने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री वेंस को 6 सप्ताह पहले शुरू हुए युद्ध का समाधान तलाशने की जिम्मेदारी दी है। ये कदम राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार दी गई चेतावनी के बीच आया है। इसमें संघर्ष के और बढ़ने पर ईरान की पूरी सभ्यता को नष्ट करने की धमकी शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कहा कि वैश्विक व्यवस्था गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और हिंद महासागर के देशों को आने वाले कठिन समय के लिए तैयार रहना चाहिए। मॉरिशस में आयोजित 9वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि भले ही दुनिया पहले से अधिक खंडित हो गई हो, लेकिन हिंद महासागर के देशों को अधिक एकजुट होने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज के समय में समुद्री अवरोध वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय है और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की भलाई के लिए नियंत्रित मानसिकता से बाहर निकलना आवश्यक है। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक शिवधर रेड्डी ने तेलंगाना राज्य समिति और पीएलजीए के शेष सदस्यों के आत्मसमर्पण के बाद तेलंगाना को सशस्त्र माओवादी संगठनों से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया। ये उपलब्धि राज्य के लिए वामपंथी उग्रवाद को निष्क्रिय करने में एक रणनीतिक जीत है। पीएलजीए बटालियन कमांडर सोडी मल्ला और विभिन्न समिति सचिवों सहित कुल 42 माओवादियों ने 36 हथियारों और 800 ग्राम सोने के साथ आत्मसमर्पण किया। पुलिस महानिदेशक ने इस सफलता का श्रेय तेलंगाना ग्रे हाउंड्स और जिला पुलिस के निरंतर अभियानों को दिया। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाताओं की संख्या में 84 लाख से अधिक की वृद्धि हुई और ये बढ़कर करीब 13,39,00,000 हो गई। निर्वाचन आयोग ने आज अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की। लोग आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अपने नाम की जांच कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने मानवाधिकारों पर लघु फिल्मों की अपनी 12वीं वार्षिक प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। लघु फिल्में अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में हो सकती हैं जिनमें अंग्रेजी उपशीर्षक शामिल हों। लघु फिल्म की अवधि न्यूनतम 3 मिनट और अधिकतम 10 मिनट होनी चाहिए। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 30 जून है और विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।